अब चलते हैं अगली आयत पे। थोड़ा सा इसके पीछे आपको मैं इंशाल्लाह ज़हनी तौर पे बार बार इसलिए भी बीच में साथ लेती हूँ ताकि आप अगर थोड़े से इधर उधर हो गए थे तो रुक जाइए। आयत नंबर 254 से लेकर सूरत बकरा के आखिर तक। अब जो मजमून चलेगा वो टॉपिक लिख लें तो बात सारी आसान होगी। तौहीद की हकीकत और उसके तकाजे। अल्लाह सुबहान तआला की इस दुनिया में इंसान क्यों भेजा गया? मालिक ने उसको क्या दिया? उसके हाथ में क्या कुछ है और अल्लाह उससे चाहता क्या है? जैसे अभी आयत नंबर 254 में हम अल्लाह पर ईमान लाने का पहला तकाजा पढ़ेंगे और आयत 255 जिसको हम आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं वो तौहीद की सारी किस्में सिखा देगी। आइए शुरू करते हैं और उसके बाद आगे उस आयत फिर 256 से चंद आयात में आज के सबक के एंड तक रुकावटें, तागूत क्या हैं, क्या चीजें हैं जो हमें अल्लाह का बनने से रोकती हैं, और उसके बाद फिर जहां से कल का इंशाल्लाह सबक शुरू होना है वहां से माली मामलात। गोया के अल्लाह की बात मानना आसान कब होगा हमारे लिए? जब हम अल्लाह के मुकाम को पहचानेंगे। आज हमारी जिंदगियों में ये जो अल्लाह सुबहान तआला के मामले में दो रुखापन है ना, और रिलक्टेंट है, शक है, इसको मान लीजिए कि ये चीज दुरुस्त नहीं है। पीछे हमने आखिरी दो रुकू जो थे पारे के, सेकंड पारे के, उसमें तालूत और जालूत की जंग के वाकयात पढ़े। गोया के गजबे बदर के लिए जहनी और नफसियाती तैयारी थी। वहां एक आयत गुजरी थी, मंजल्लजी युकरिदुल्लाहु कर्दन हसना, कौन है जो कर्जे हसन दे। वहां बता दिया गया कि जहां जंगों में जाने देने का और सर कटाने का मौका बन जाता है वहां माल की भी जरूरत पड़ती है। यहां बड़े शद्दोमत से, यानी कहना चाहिए पूरे यकीन के साथ जो बात की जा रही है वो इन्फाक है। यहां से असल में अब माली मामला शुरू हो रहे हैं और इधर से लेके सूरत के एंड तक आप सूद भी पढ़ेंगे, सदके की बातें भी पढ़ेंगे, सूद की भी पढ़ेंगे, कर्ज की भी पढ़ेंगे, रहन की भी पढ़ेंगे और कर्जदार को मोहलत देने की भी पढ़ेंगे। तो आइए अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लायो, आपको पुकारा है आपके रब ने, कहिए जी अल्लाह, हाजिर हूं। जो आप कहेंगे मैं उस बात को सुनने, मानने और अपनी हैसियत के मुताबिक उस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। तो पहली ही बात फरमाया कि अनफिकू, खर्च करो, तुम अब खर्च करो। अनफिकू के लफ्ज को हाईलाइट कर लें, जाके बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, यानी खर्च करो, स्पेंड। क्या सारा? हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया? का नहीं, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो हमने तुमको दिया। सारा नहीं का, कुछ, सम ऑफ, थोड़ा सा ही, लेकिन तुम्हें खर्च तो करना पड़ेगा। ये जो लफ्ज है ना अनफकू, नफक से है। नफक वो सुरंग जिसके दोनों सिरों में सुराख हो। आप देखते हैं गाड़ी एक तरफ से जाती है तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, तो नफक से ही इन्फाक है। इधर से माल आया, उधर से चला गया। अच्छा, बाज सुरंगे कैसी होती हैं? जैसे चूहे की बिल, या कभी आप जंगलों में जाएं तो जानवरों ने छोटी छोटी बिलें बनाई होती हैं, घुसते हैं अंदर फिर उसी में से निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है आपको? सरब। कहां पढ़ेंगे आप? हर जुमे को पढ़ते हैं सरबा, मछली निकली और गिरी। सरब कहते हैं वो सुरंग जिसके जाने और आने का एक ही रास्ता हो, बिल, कुछ चूहे का बिल, वो जेन में ले आए। बट नफक कहते हैं इधर से गए उधर से चले गए। अन नफकतुन और अन नाफिका, जंगली चूहे के बिल के मुख्तलिफ सुराखों में से एक सुराख को कहते हैं। वो उसके ऊपर ना मट्टी की एक बारीक सी पपड़ी बिछा देता है। देखने में लगता है कि ये जमीन है, बंद होती है देखने में, बट जो ही वक्त पड़ता है उस पर जरा सा हाथ या सर मारता है तो वो उसकी तय उतर जाती है, तो ये उसके अंदर चला जाता है। तो दुश्मन को बेसिकली उसके घर का नहीं पता चलता। तो यहां इन्फाक से क्या पता चलता है कि माल तुम्हारे पास आए और तुम इधर से आए उधर निकल जाए। आप सुरंग में कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है? कितना खतरनाक होगा। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर लाइट्स चली जाए, अंधेरा हो जाए, किसी की गाड़ी अंदर खड़ी हो जाए, पिछली गाड़ियां उसको टक्कर मार के बाहर निकाल देंगी। इसी तरह से मुनाफिक वो शख्स होता है, मुनाफिक लफ्ज भी इसी से ही है, नफक से ही है। यानी मैं अक्सर कहती हूं कि सिर्फ एक अलिफ का फर्क है, निफाक पैदा होता है इन्फाक ना करने से। अल्लाह कहते हैं अनफिकू, तुम खर्च करो, कुछ भी करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो तुमको हमने दिया, सारा नहीं, कुछ, सम ऑफ मिन और मा, 100 में से 250, ये कुछ ज्यादा। अल्लाह चाहता तो सारा भी ले लेता, अल्लाह चाहता तो 97.5 कहता खर्च करो, 250 तुम रख लो, नहीं कुछ तो खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम। रिस्क क्या है? सिर्फ माल, डॉलर्स नहीं, अता बख्शिश, इनायत, माल, इल्म, औलाद, आपके वसाइल, स्किल्स, सलाहियतें, सब में से हर चीज को थोड़ा थोड़ा बांट दो अल्लाह के रास्ते में। खर्च करो, खर्च करो, ये है असल में एक बंदे के दिल की सच्चाई को परखने का आला। क्यों करो खर्च? अल्लाह कहता है, कोई डेडलाइन है? कहा हाँ, मीन कबली, इससे पहले, अय्यातिया यौमुल्ला बय्युन फी, ये कि आ जाए वो दिन जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। बई का लफ्ज पीछे भी पड़ा, बा या आइन से, खरीदो फरोख्त, ट्रेडिंग के मानों में, किसी चीज को फरोख्त करना या खरीदना, दोनों मानों में आता है, कारोबार, तिजारत, किसी भी रंग में आप इसको ले लीजिए, कुछ दे दिया, ले लिया। वला खुल्लतुन, और ना खुल्ला, खुल्ला कहते हैं गहरी दोस्ती को, खलल से, उर्दू में आपने लफ्ज सुना है दाढ़ी का खिलाल करना, सुना वह? अच्छा, आप सुनते हैं दखल अंदाजी ना करो ज्यादा, ये लफ्ज उर्दू में बोलते हैं ना, तो खलल, खुल्ला, खिलाल, दाखिल होने को कहते हैं, दखल अंदाजी इसी से ही है। ऐसी दोस्ती जो इंसान के दिल में दाखिल हो जाए, खलल डाल दे, उसकी सोचों में आ जाए, गहरी दोस्ती। याद रखिए लफ्ज मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज है, ये मोहब्बत से अगला दर्जा होता है। और इब्राहिम को अल्लाह ने क्या कहा? वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला, अबू बकर के लिए नबी सल्लम ने कहा कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर को बनाता, मगर मैंने अल्लाह को खलील बनाया। और अबू बकर को क्या कहते थे? खबीब। लफ्ज खलील सिर्फ अल्लाह के लिए आता है, ये भी लिख लें। और अगली बात लिख लें, क्यामत के दिन कोई किसी का खलील नहीं होगा, क्योंकि ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, क्योंकि उस दिन किसी ने किसी के काम ही नहीं आना, तो फिर क्या होगा? तो खुल्ला, खलवत। और कहते हैं कि खलील वो दोस्त होता है जिसको बंदा तन्हाई में याद करे, फास्ट फ्रेंड, वो कहते हैं ना उसकी मोहब्बत में दिल खाली हो गया। अलहल्लू कहते हैं वो रास्ता जो रेत के अंदर बनता है, रेगजार होते हैं ना, बहुत रेत होती है, पता नहीं चलता जाना किधर है, लेकिन जहां से कोई गुजरे वहां रास्ता बनता जाता है, तो उस रास्ते को भी अलहल कहते हैं। इसी तरह दो चीजों के दरमियान कुशादगी, खिलालुद्दियार कहते हैं घरों के दरमियान की जगह, यानी आपका घर है, थोड़ी दूर दूसरा घर है, तो दोनों घरों के बीच की जो जगह है उसको कहते हैं। इसी से लफ्ज तखल्लुल भी है। बहरहाल लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ताला कहते हैं आम दोस्त तो आम दोस्त है, उस दिन तो कोई बड़ा गहरा दोस्त भी नहीं काम आएगा। वला शफातुन, और कोई सिफारिश नहीं चलेगी। शिफातुन का लफ्ज शफा से है, शीन फा आइन। शफा का लफ्जी माना होता है मिलाना, तकवीयत देना, वास्ता, किसी चीज को दूसरी चीज के साथ मिला देना, दो चीजों को एक दूसरे के साथ मुत्तसिल कर देना। देखिए सुबह आते हुए आप सॉक्स पहनते हैं ना, आपको एक पाँव मिल जाए दूसरा ना मिले तो नहीं पहनते ना। शफ में स्पाउस का मानी होता है पेयर का एक हिस्सा, जूते का एक पाँव होगा दूसरा बेकार है नहीं है तो शफी क्या है कि एक बंदा अकेला खड़ा था, अपने हिस्से का काम या अपना काम नहीं निकला सका, दूसरा आया, उसने उसकी सिफारिश की और उसका काम हो गया। तो फिर शिफात के अंदर कह लीजिए कि किसी काम के करवाने का वास्ता, वसीला बनाने की बात भी आ जाती है। और आगे मजमून तो हम आयतुल कुर्सी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां मतलब समझ आ गया कि क्यामत के दिन कोई किसी की शिफात नहीं करेगा, कुछ भी फायदा नहीं देगा। बहुत खूबसूरत लफ्ज है ये, अरब लोग कहते हैं नाकतुन शाफियुन, वो ऊंटनी जिसका एक बच्चा इसके पीछे लगा हो, वो जैसे छोटा बच्चा मां के पीछे रिंगता है ना, तो ऊंटनी के पीछे उसका बच्चा जब रिंगता है तो कहते हैं नाकतुन शाफियुन। फिर इसी तरह से दूसरा उसके पेट में भी हो, समझ आए? कोई आपसे पूछ लेता है नाकतुन शाफियुन कौन सी ऊंटनी है, कहेंगे एक बच्चा उसके पीछे पीछे फिर रहा है और दूसरा पेट में, यानी प्रेग्नेंट है वो ऊंटनी। इसी तरह नाकतुन शिफून कहते हैं वो उठनी जो एक मरतबा दूध धोने में दोनों वक्त का दूध इकट्ठा कर दे। आप नोट कर रहे हैं अरबों की डिक्शनरी में सबसे ज्यादा मिसालें उठनी की हैं, उनकी कुल कायनात यही थी। इसी तरह शिफाई कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की घास जो दो दो होकर इकट्ठी उगे, तो इसमें दो दो का लफ्ज है पेयर स्पाउस। इसी तरह शात शाफियन भी कहते हैं उस बकरी को जिसका बच्चा उसके साथ हो। तो अब यहां से अब शफा का मानी समझ गए कि अकेला बंदा कुछ कर नहीं सका, दूसरा उसके साथ आगे काम करने लग गया, उसकी मदद करने लग गया। यहां मुराद है कि क्यामत के दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। वल काफिरून हुम अज़्ज़ालिमून, और काफिर ही जालिम है। ये काफिर कौन से हैं? अल्लाह को ना मानने वाले, नोट करिएगा, अनफकू का इनकार करने वाले, अल्लाह के रास्ते में देने का इनकार करने वाले, मानवी काफिर, अल्लाह के हुक्म का इनकार। अल्लाह ने कान फेंकू, वो कहता मेरे से नहीं होता, मेरी तो अपनी नहीं पूरी पड़ती। वो देखता कि दीन मगलूब है, इसको गालिब करने की कोशिशें हो रही हैं, इसके कुछ तकाजे हैं, इसकी माली जरूरतें हैं, और अल्लाह ने इसको कुदरत दी है, माल है, खर्च कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। इसको अल्लाह कहते वल काफिरूना हुमुज जालिमून। जरा सा इस आयत को समझना, मुझे इस आयत को समझाने के लिए अल्लाह दो दिन से तैयारी करवा रहा था। आप तक भी खबर पहुंची होगी, मेरे तक भी किसी ना किसी के जरिए से पहुंच जाती है। दो दिन से मैसेजेस आ रहे थे मुझे, इंडिया से एक स्टूडेंट है तो उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और मैं टाइम होता तो शायद मैं आपको उनकी ऑडियो सुना देती, लेकिन मैं पर्पसली नहीं सुना रही। जो जज्बाती मंजर उन्होंने अपनी ऑडियो में खींचा है कि रातों रात इंडिया में 500 और 1000 के नोट पे बैन लगा है। आप में से कोई इंडिया नहीं रहता तो आपकी खबर नहीं होगी, जिनके रिश्तेदार रहते हैं, यानी उनकी गवाही दे रही हैं, और कुछ पिक्चर्स भी हैं मेरे पास इसमें और भी जगहों से मुझे मिली, कि इंडियन गवर्नमेंट ने शायद ब्लैक मनी को डिक्लेयर करवाने के लिए ओवरनाइट रात 12 बजे एक ऑर्डिनेंस दी है कि 500 और 1000 के नोट, जो वहां के हिसाब से सबसे बड़े नोट थे, और जो लोग मनी सेव करके रखते हैं हमेशा बड़े नोटों में थे, अब वो खत्म है। पूरा चार्ट है मेरे पास फोन में कि सिर्फ 2 दिन है आपके पास बैंक से बदलने में, और ये 2 दिन उन्होंने बैंक बंद भी कर दिए। अब से लेके नवंबर में डेली 2000 पे, फिर आगे जाके कुछ दिन बाद 4000, फिर नवंबर के एंड तक गालिबन उनकी को वैल्यू, शॉपिंग आज ही खत्म। सब्जी वाले को 500 का नोट दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा, इंप्लॉयज को दे रहे हैं, उसकी खरीदो फरोख की नो वैल्यू। ये है वो आयत, और मैंने भी उनको जवाब में यही आयत लेके भेजी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली, एक ऐसा दिन आने वाला है हमारे सारे नोट एक्सपायर, नो वैल्यू ऑफ 500 और 1000 नोट नाउ, और 2000 के जो नोट आने हैं वो भी उन्होंने किस किस तरह सस्का के देने, पूरे प्लान गवर्नमेंट ने लोगों को दिया है, सिर्फ 2000 लेंगे अभी, फिर 2, 3, 4, 6 महीने में जाके कुछ नोट, आप एटीएम मशीनों की लिमिट, बैंक्स बंद और कुछ नहीं। और वो कहती हैं कि उस्ताजा इंडिया में क्यामत आई हुई है इस वक्त, और किसकी क्यामत ज्यादा, कहती जिन्होंने पैसा जमा करके रखा हुआ और गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन करवाई है कि लॉ किधर है। तो मुझे लगा कि शायद ये आयत मुझे समझाने के लिए ये बात है। होना तो यही हम सबके साथ है, सच बताइए, हम सब के इस जिंदगी के चेक की एक्सपिरेशन तो है ना। अल्लाह ताला कहते हैं मिन कबली यही याद ये यौमन, अब ये यौमन कौन सा दिन होगा, क्यामत, तो वो एक छोटी सी क्यामत जो मेरे आपके सर पे पहले पड़ी है, वो इज्तमाही क्यामत आने पे सबके साथ ये होना है, बट मेरी मौत आने पर मेरे साथ ये हो रहा होगा। हदीस में आता यकूल अब्दू माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, मगर उसके माल में से सिर्फ उसका वो है जो उसने खा लिया, गंदगी बन के जिस्म से निकल गया, पहन लिया बुसीदा बन के पुराने चीथड़े, और तीसरा वो जो अपने हाथ से अल्लाह के रास्तों में दे दिया, वो क्यामत के दिन उसको मिलेगा। यह आयत पढ़ के हमेशा मेरा दिल उदास हो जाता है। कभी आपका कोई क्यूपन हो और एक्सपायरी डेट गुजर जाए आपकी गफलत की वजह से, लोग कहते हैं हाँ इस्तेमाल ही नहीं किया चला गया, चेक हो आउटडेटेड हो गया, अब कुछ नहीं उसका हो सकता, क्या पता चला कि ये माल सींत सींत के रखने की चीज नहीं है। देखिए गटर बंद होता है कब होता है, जब उसका रास्ता बंद कर देते हैं। सारा दिन पानी बहता रहे बहता रहेगा, पर आगे क्लॉग आ जाता है ना, तो वो ही वापस पानी आपके पाँव को लगता है तो आप उलझन आती है। मेरी आपकी दुनिया की चीजें क्लॉग नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह कहते हैं मैंने दिया है, कोई मैं तुमसे दूसरों का तो नहीं मांग रहा, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुमको दिया वो खर्च करो, मैं कोई तुमसे दूसरी चीजें तो नहीं मांग रहा। और याद रखिए कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह के फिर मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, लीस्ट मिनिमम ज़कात है। जो लोग ज़कात नहीं देते अपने माल की, वो माल उनके लिए कंस बन जाता है। फरमाया कंस क्या है? कहा क़यामत के दिन वो माल सांप की सूरत में उसके गले में लिपटेगा और उसके जबड़े मुंह खोलेगा और अंदर डसेगा और कहेगा अना कंजुक अना कंजुक, मैं तेरा कंज हूं, तेरा खजाना। सोने की सूरत में है, कैश क्रॉप जिस सूरत में, और ज़कात नहीं दी हुई, मान लीजिए कि वो फिर चीज इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा वबाल की है। उसके बाद दूसरा दर्जा होता है सदके का, खुशी से दो सिद्क के साथ, आगे कल के सबक में उसकी बातें आएंगी। लेकिन फिर खर्च करने के मुख्तलिफ दर्जे, मुख्तलिफ चीजें, आपके काम में चीज ना आए दूसरे के आ जाए। देखिए मैं आपको सिर्फ एक क्राइटेरियन देके अगली आयत पे ले जाऊंगी, क्योंकि वो आयत बड़ी अहम है और वो पढ़े बगैर खर्च करने को दिल्ली कोई नहीं करता, क्योंकि आगे एक आध लेसन चलता जाएगा इसी मौजू पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सिंपल क्राइटेरियन अपने लिए जो मैंने रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हर मौके पे जब इनायतों पे आती हूँ फिर अपने आप को चेक करती हूँ, वो क्राइटेरियन आप एक सवाल की सूरत में लिख लें, आपको अपनी असल समझ आ जाएगी। कहाँ खुशी से खर्च करती हूँ? अपनी जात पे, अब जात में ख्वाहिशें तमन्नाएं, कपड़े जूतियां पर्स मेकअप का सामान और ए टू जी लिख लें, लंबी लिस्ट है, बोलने का वक्त ही नहीं है इतना। इस पे खुशी से खर्च करती हूँ या अनफिकू में मरज़क़नाकुम या फी सबीलिल्लाह खर्च करती हूँ? जब एक इंसान अपने ऊपर दिल खोल के खर्च करे और अल्लाह के रास्ते में ना करे तो ये बदतरीन मिसाल है। दूसरी सूरत क्या होती है? अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा या मुनासिब कर रहा है, एक्स्ट्रा सारा दूसरी चीजों पे, ये बेहतरीन मिसाल है। तीसरी सूरत क्या होती है? अपने ऊपर भी खूब खर्च करते हैं माशाल्लाह, खुला हाथ खुला दिल खुला माल, अल्लाह के रिश्तों में भी खूब देते हैं, इसमें किफायत है, बच जाएंगे वो लोग कि भाई इनका हाथ ही खुला था, ये छोटा चेक लिख ही नहीं सकते थे, जीरो जीरो डालते, इनको याद ही नहीं रहता था आगे कितने डाल दिए, इट्स ओके, मस्जिद में भी $1,000 का चेक डाल देंगे, एक जोड़ा भी $1,000 का ले ले, इट्स फाइन। बट वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि बंदा अपनी दुनिया में खुद पे भी ना लगाए और अल्लाह के रस्तों में भी ना दे और दुनिया से जाए तो करोड़ों की जायदाद हो। बखील है वो शख्स जो अपनी जात पे भी नहीं लगाए और अल्लाह के रस्तों में भी ना लगाए और बाद में उसकी जायदाद लोगों के झगड़ों का जरिया बन जाए। आप और मैं अपने आप को चेक कर लें। मैंने हजरत उस्मान से बहुत सीखा इस मामले में। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जरूरतमंद थे। इत्तफाक देखिए कि आपके पास उस वक्त कुछ नहीं था, आपने कहा वो चले जाओ उधर उस्मान के घर ले लो जाके। कभी थोड़े से दूर ही थे तो घर के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई। उस्मान कह रहे हैं अल्लाह की बंदी, जब एक चिराग से काम चल सकता था तो तूने दो चिराग क्यों जलाए? आज की जुबान में चिराग क्या है? बल्ब। ये दो बल्ब क्यों जला दिए जब एक से काम चलता था? शख्स उनके पीछे से बाहर आ गए। क्या हुआ, मांगा तो मिला नहीं? अल्लाह के नबी मेरा ख्याल है मुझे नहीं देंगे। कहा तुमने मांगा था? कहा नहीं मांगा तो नहीं। अच्छा जाओ फिर जाओ। जाके नॉक कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, ये वो जरूरतमंद। अच्छा जरूरतमंद हो, ठहर जाओ। अंदर गए, अशरफियों की थैली लाके उस्मान गनी ने उस शख्स के हाथ पे रख दी। अब उस शख्स से सब्र नहीं हुआ, कहा मुझे एक बात तो बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी बेगम से झगड़ रहे थे इस बात पे कि तुमने एक फालतू बल्ब क्यों जला दिया, और अब क्या? कहा देखो वो बल्ब मेरे खाते में पड़ता, यानी खाता मतलब ये कि मुझे बिल देना पड़ता। याद रखिए ये दुनिया का बिल कुछ भी नहीं होता, इसका क्या दे देंगे, है कमाते हैं खाते ही इसलिए, और क्या? वो खाता था आखरत का, कहते थे मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, और ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मेरा आगे जमा हो रहा है, बस ये सीख लीजिए। हम तो एक बटन के साथ 10 बटन दबाते हैं, हमारे तो पता ही नहीं चलता। इतनी फरावानी अल्लाह ने हमें, इतना नेम तो मैं पाल दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 पहाड़ों के दरमियान की बकरियां मांगी, यानी इतनी ज्यादा बकरियां थी कि वैली होती है ना वादी, उसके बीच में बकरियां बकरियां थी। तो वो शख्स नॉन मुस्लिम था, अल्लाह के नबी ने कहा तुमने मुझसे मांगी है, जाओ सारी ले लो। वो शख्स मुंह देखने लग गया, मैं काफिर, ये नबी ये मुझे एक मांगने पे इतना दे रहा है? वापस गया अपनी कौम के पास। ओ लोगो जल्दी करो, इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लम इस कदर अता फरमाते हैं कि फिर मुख्ताजगी का खौफ ही नहीं रहता। ये मुस्लिम की रिवायत है। इस बात पे मुसलमान हो गया। आज अगर हम मुसलमानों के हाथ खुल जाए ना, वल्लाही मैं कहती हूँ ना दे मस्जिदों को, मदरसों को, इदारों को, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना शुरू कर दें, खाने की प्लेट, सूप का बोल, किसी भी तरह, तो लोग कहेंगे ये मुसलमान खुले दिल वाले होते हैं, इनका दिल बड़ा खुला होता है। तो लिहाजा अनफिको, खर्च करो। अब खर्च करने की बात सुन के दिल पे बोझ तो पड़ता है, बस मांगे फिर मांगेंगे हम और दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दे सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इनको क्या पता मेरे हालात का। जब कभी खर्च करने के बाद ये सवाल जवाब आने लगे ना, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं किसके रस्ते में खर्च की बातें। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, यहां आपको आयतुल कुर्सी का कुरान पाक में मुकाम समझ आएगा कि यहां क्यों आई है। देखिए कुछ आयतें बड़ी अहम है ना, तो हम कहते हैं पहली आयत होती कुरान की, आखिरी होती, टॉप मोस्ट होती, बिल्कुल तीसरे पारे के शुरू में दो तीन आयतों के बाद आयतुल कुर्सी आई। हम होते तो इसको सजाते कहीं ना कहीं, ऊपर हाईलाइट कर देते। लेकिन यहां क्यों आई है कि जब तक तुम्हें उस हस्ती का नहीं पता जिसके रास्ते में तुम्हें खर्च करने की दावत दी जा रही है, या जो तुम्हें कह रहा है कि तुम खर्च करो, तब तक तुम खर्च करोगे भी कोई नहीं, कभी नहीं इंसान खर्च कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, जब इंसान फौत हो जाता है तो इसके तमाम अमल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय तीन अमाल के। नंबर एक सदक़ा जारिया, नंबर दो वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नंबर तीन नेक यानी सवाले हालात जो इसके लिए दुआ करें। तिर्मिज़ी की रिवायत अबू बरज़ा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन किसी बंदे के कदम नहीं हटेंगे यहां तक कि पांच चीजों के बारे में उससे पूछ न लिया जाए। नंबर एक उम्र, किन कामों में खर्च की। नंबर दो इल्म, उसके मुताबिक अमल कितना किया। और तीन माल के बारे में, कहां से कमाया, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम, और कहां से खर्च किया। और पांचवा जिस्म के बारे में, ये बॉडी हमारी अल्लाह की नेमत का, इसको कहाँ खपाया, तुम्हारा जिस्म कहाँ थका, तुम्हारे पाँव कहाँ थके, तुम्हारे ये पाँव में छाले कैसे बढ़ गए, टांगे कैसे तुम्हारी थकी, कमर कहाँ खपी, ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बुखारी की रिवायत इब्ने मसूद से, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो। तो साहबा ने कहा कोई भी नहीं, सबको अपना ही माल अच्छा लगता है। देखिए ना, अगर आपके पास करोड़ों हैं तो मुझे क्या लगे, मुझे तो वो अच्छा लगेगा जो मेरे हैं, जिसको मैं खर्च करूं। तो कहा किसी को दूसरे का माल अच्छा नहीं लगता। तो आपने फरमाया बस इंसान का माल तो वही है जो इसने सदका खैरात करके आगे भेजा, बाकी तो इसके वारिस का माल है जो वो पीछे छोड़ेगा। बुहारी की रिवायत है 6442 नंबर की। फरमाया के इत्तकुन नार वला बिशिक्कि तमरा, आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े के साथ ही। बुखारी की रिवायत है अदी बिन हातिम से। तो याद रखिएगा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से फायदा होता है, ना खर्च करने वाला अंधेरों में होता है, भटकता रहता है, उसको इस्लाम का मकसद समझ नहीं आता, शैतान का तर निवाला बन जाता है, दिल में माल की मोहब्बत और बढ़ने लगती है, वो चंद जाहरी कामों को आखिरत की निजात के लिए समझने लगता है। खर्च करने से फायदा पता क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा कि दिल से माल की मोहब्बत निकल जाती है। दूसरी तरह खर्च ना करें तो नेकियों की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, कहते हाँ हु केयर्स, बथेरे हैं कर लेंगे, मैं क्यों करूं, मुझे कुछ मिलेगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करना, आ रहा हूं तो पैसे दे रहा हूं, नहीं आ रहा तो मैंने तो नहीं देने, मुझे फायदा हो रहा है तो फायदा की चीज है, नहीं है तो नहीं है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला ने ये एक मोहब्बत भरी अपील दी है। अच्छा एक सवाल करके आगे चलते हैं, और वो क्या कि अल्लाह को जरूरत है, या अल्लज़ी ना मनन फिकू, तो मैं तो किसी से तभी मांगूंगी ना जब मुझे जरूरत होगी। हर एक मांग सकता है एक दूसरे से, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत भी मांगते हैं ना। क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को जरूरत है, तो जवाब लिखिए कि नहीं, अल्लाह को जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत भरी अपील है, ये एक रूहानी रब्ता है अल्लाह और बंदे के बीच का। अल्लाह अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं बंदे के साथ कि आओ शेयर डाल लो, हम तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा देंगे। और बताया जा रहा है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज अगर इस मौके से फायदा ना उठाया तो हो सकता है फिर ये मौका कभी ना आए। शायद ये लास्ट कॉल हो नेकी करने की, और तुम्हारा थोड़ा सा माल इतनी बड़ी कंपनी के हिस्सों में डल जाएगा तो तुम्हारे शेयर्स बढ़ जाएंगे, वरना कल ये माल ले लेके फिरोगे। जो स्टूडेंट है हमारी, उसके ये भी जुमले थे, कहने लगी कि आपने क्लास में वो हदीस बताई थी कि क्यामत के करीब लोग माल ले लेके फिरेंगे और उसको कोई देगा नहीं कुर्बे क्यामत की अलामतों में, तो कह रही इस वक्त इंडिया में ये हाल है। सारा सारा दिन मर्द इधर उस बैंक में जा, उस पोस्ट ऑफिस में जा, उधर अपने नोट लेके जा रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ये अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया में दिखाता है हम सबको, दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला आंखें खोल दे।